नमस्कार भारत, 9 जनवरी दिन बुधवार। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास।
सब्जेक्ट टू करेक्शन द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज आईज 323 नोज 3 द बिल एज अमेंडेड।
आरक्षण के फैसले से क्या सवर्णों को साध पाएगी भाजपा?
कुछ तो फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि बीजेपी प्रोपेगेंडा में बहुत माहिर है, तो जरूर कुछ तो मिलेगा।
सुनवाएंगे शिवसेना नेता संजय राउत की बीबीसी से खास बातचीत।
अमित शाह जी भाजपा के बड़े नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर हमें पटकने की बात महाराष्ट्र में आकर अमित जी ने की है, अमित भाई ने की है, तो अब मजा आ जाएगी।
साथ ही बिहार के प्राइमरी स्कूलों पर भी होगी एक विशेष रिपोर्ट और अखबारों की समीक्षा भी। लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, नवीन नेगी से। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए लाया गया संविधान विधेयक कल लोकसभा में पारित हो गया। इस विधेयक पर कल लोकसभा में करीब 5 घंटे तक चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद देर रात विधेयक पर मतदान किया गया। विधेयक के समर्थन में 323 जबकि विरोध में केवल 3 मत पड़े। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने से जुड़े अपने फैसले के बारे में टीवी के जरिए अमरीका की जनता को संबोधित करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे मैक्सिको की ओर से अमरीका में प्रवेश करने वाले गैर कानूनी प्रवासियों को रोकने के लिए सीमा पर दीवार का निर्माण करना चाहते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट सांसद इस दीवार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने देश के सरकारी बजट से इस दीवार के निर्माण के लिए $5 बिलियन की राशि खर्च करने से इंकार कर दिया है। ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच इस तकरार के चलते अमरीका में सरकारी कामकाज कई दिनों से ठप पड़ा हुआ है। इस संबंध में डेमोक्रेट सांसद डिक डर्बिन ने कहा है कि अमरीका में सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों को ट्रंप की वजह से बिना तनख्वाह के काम करना पड़ रहा है। डिक डर्बिन ने कहा,
We are facing a government shutdown that is totally unnecessary. President Trump proudly announced that he was proud of this shutdown.
हमारी सरकार ने बेवजह का सरकारी शटडाउन किया हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत गर्व से कहा था कि वे शटडाउन करने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं एक बैठक में था जहां उन्होंने कहा कि यह शटडाउन महीनों और सालों तक जारी रह सकता है। यह सब गलत है और गैर जरूरी है। ये थे अमरीका के डेमोक्रेट सांसद डिक डर्बिन के शब्द। जापान में पुरुषों की एक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख पर विवाद हो गया है। स्पा नामक पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया गया जिसमें एक जापानी विश्वविद्यालयों की एक सूची दी गई जिसमें बताया गया था कि किस विश्वविद्यालय की छात्रा शराब पीने के बाद यौन संबंध बनाने के लिए सबसे पहले राजी हो जाएगी। जापान की महिलाओं ने इस आपत्तिजनक लेख और सूची का विरोध किया है। एक जापानी छात्रा कजुना यामाटोटो ने इस संबंध में ऑनलाइन याचिका दायर कर पत्रिका के खिलाफ अभियान की शुरुआत की थी। उनकी याचिका को हजारों लोगों का समर्थन मिला है। पत्रिका ने भी अपने इस लेख पर माफी मांगी है। कजुना यामाटोटो ने इस संबंध में बीबीसी को बताया,
I think it just requires a lot of people to speak up and for girls to understand that they're allowed to say no, that they're allowed to say
मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। लड़कियों को यह समझना चाहिए कि वे ना कह सकें। लड़कियों को यह जानना होगा कि उनका इस तरह से गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। हम सभी को इसका विरोध करना चाहिए। ये थे जापानी छात्रा कजुना यामाटोटो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कांगो गणराज्य में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों में लगातार गड़बड़ियों की शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। अब एक कैथोलिक पादरी ने कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से चुनाव के दौरान गड़बड़ियां होते हुए देखी हैं। चुनाव के नतीजे अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। चुनाव अधिकारियों ने इसके लिए भारी साजो सामान को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि विपक्षी नेताओं का दावा है कि चुनावों में धोखाधड़ी हुई है। विश्व बैंक ने एक नई रिपोर्ट जारी कर आने वाले वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह से दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ रही हैं, इससे नए साल में और उसके बाद आने वाले सालों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीचे गिर सकता है। विश्व बैंक ने चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर का खास तौर पर जिक्र किया है। हमास का कहना है कि उन्होंने दर्जनों संदिग्ध फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है जो बीते नवंबर में गजा में इजरायली विशेष बल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच हुई लड़ाई में इजरायल का साथ दे रहे थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। बीती रात लोकसभा में आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2/3 से अधिक बहुमत से पारित हो गया। वोटिंग से पहले AIADMK ने सदन से वॉकआउट कर दिया। संविधान में 124वें संशोधन विधेयक के लोकसभा से पारित होने से पहले आरक्षण के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। सुनिए बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा की ये रिपोर्ट।
The motion for consideration to the vote of the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration.
लोकसभा में रात तक चली बहस के बाद सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का बिल 2/3 से अधिक बहुमत से पारित हो गया। इससे पहले संसद में बहस जोरदार रही। कांग्रेस के सचिन पायलट ने सरकार को सालाना 2 करोड़ नए रोजगार पैदा करने का चुनावी वादा याद कराया।
आपके मैनिफेस्टो में कहा गया था हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दिलवाई जाएंगी, रोजगार के अवसर उत्पन्न करे जाएंगे युवाओं के लिए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष यानी कि 5 वर्ष में 10 करोड़ यानी कि हर दूसरे घर में नौकरी। मगर आपके मैनिफेस्टो में जो ये बात की गई है उस पे आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है वो भी आप देश में बताएं।
वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने विधेयक का समर्थन तो किया लेकिन देश में पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा भी उठाया।
दबे कुचले पिछड़े शोषित पीड़ित SC ST माइनॉरिटी के साथ जितना अन्याय हो सकता है, जितना अत्याचार हो सकता है, जितना भेदभाव हो सकता है, जितना शोषण हो सकता है, वो मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है।
भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की।
निजी क्षेत्र में जो आरक्षण है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है, उसकी भी बात कीजिए। ना सिर्फ SC ST BC के लिए बल्कि 60% जो आरक्षण दे रहे हैं इसके लिए जो है वहाँ भी 60% आरक्षण होना चाहिए।
दूसरी ओर भाजपा के पूर्व सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हो उसे ही आरक्षण का फायदा पहले मिलना चाहिए।
मेरा सुझाव है सरकार से कि आप जोड़िए आरक्षण का लाभ चाहे इसमें हो, प्राथमिकता के आधार पर पहले उनको आरक्षण की सुविधा मिले जो सरकारी विद्यालय में अध्ययन जिन्होंने किया हो, इसको जोड़िए प्रावधान के रूप में, उसे सीट बचे तब दीजिए प्राइवेट विद्यालय को।
वहीं जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के सांसद पप्पू यादव ने सरकार के आर्थिक आधार पर ही सवाल उठा दिए।
क्या ये 65,000 रुपया कमाने वाला, 5 एकड़ जमीन रखने वाला और 8 लाख तो फिर 2.5% स्लैब आप किए हुए हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ OBC को 6 लाख और यहाँ 8 से 7 लाख तो गरीबी रेखा का मापदंड क्या होगा।
सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण के विधेयक पर संसद में बहस जोरदार रही लेकिन क्या बीजेपी चुनावों में इसका इतना ही जोरदार फायदा उठा पाएगी ये देखना अभी बाकी है। दिलनवाज पाशा, BBC दिल्ली।
कल रात विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 ट्वीट किए। इसमें उन्होंने कहा कि इस विधेयक का लोकसभा में पास होना देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। ये समाज के सभी तबकों को न्याय दिलाने के लिए एक प्रभावी उपाय को प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने इसके लिए सभी सांसदों का धन्यवाद किया। लोकसभा के बाद संविधान संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसके लिए राज्यसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। चुनावों से ठीक पहले देश के सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के सरकार के फैसले को राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। तो क्या चुनावी पिच पर मोदी सरकार की ये धुआंधार शुरुआत है? यही जानना चाहा हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामा सेशन से।
देखिए, जो ये सिक्सर है या 4 रन है ये तो मैं कह नहीं पाऊंगी क्योंकि इसमें कई सारे इश्यूज हैं। तो ये एक मैं कह सकती हूँ कि ये अपनी इरादा साफ करने का एक तरीका है कि भाई जो अपर कास्ट है, अपर क्लास है, हम उनकी हित का भी बहुत ध्यान में रखते हैं। क्योंकि जो आपने अगर देखा होगा कि हाल ही में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव हुआ है वहाँ पे बहुत क्लियर था कि अपर कास्ट के वोट इनको नहीं आए कई कारणों से। जो व्यापारी थे वो जीएसटी और नोटबंदी से नाराज थे, और छात्र थे या जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको जॉब्स की कमी, कहीं जॉब्स की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, तो कई सारे वजह थे। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रोक में, अब आप उसको मास्टर स्ट्रोक कहिए या जस्ट स्ट्रोक कहिए, एक स्ट्रोक में वो एक गवर्नमेंट की यही मंशा है कि हमें भाई ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कंस्टिट्यूएंट है अपर कास्ट अपर क्लास उन्हें हम खुश कर पाएंगे। लेकिन कई सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि मसलन डेटा बहुत क्लियर साफ नहीं है। हो सकता है जब रूल्स वगैरह फ्रेम होंगे तब हमें पता लगेगा कि ये 8 लाख इनकम है या 8 लाख से कम है, और ये लैंड सीलिंग कितनी है और घर का मेजरमेंट कितना होगा, लेकिन ये सब अभी मुझे साफ तौर पे ये जो क्राइटेरिया है वो नजर नहीं आ रहा है। या हो सकता है शायद ये प्रदेशों पे छोड़ दें कि भाई अपने रूल्स बनाइए, अपने वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनका आइडेंटिफिकेशन का आप अपना रूल्स और रेगुलेशंस बनाइए।
पॉलिटिकल जो रास्ता है, जो पॉलिटिकल समर्थन जिसकी बात थी, वो तो बीजेपी को मिल गया है, और जो क्लियर लीड है वो भी उसको मिल गई है। लेकिन क्या ये आगामी चुनावों में वोटों में बदल पाएगी?
कुछ तो फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि बीजेपी प्रोपेगेंडा में बहुत माहिर है, तो जरूर कुछ तो मिलेगा। लेकिन मैं दो फैक्टर्स को कहना चाहूंगी। एक तो जो जीएसटी और नोटबंदी से जो समस्याएं पैदा हुई हैं वो है, आज भी है, हालांकि सरकार ने कुछ आइटम्स निकाल दिए हैं जीएसटी के एम्बिट से। और नंबर दो, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें तो जॉब्स कम होते जा रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट अभी या तो पीएसयूज, कुछ पीएसयूज बंद करने के मूड में है, या आउटसोर्स कर रही है अपने कई सारे काम, आप ठेकेदार और प्राइवेट फर्म्स को आउटसोर्स कर रही है। रामविलास पासवान जी ने फिर से कहा कि आरक्षण होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन वो तो दूर आगामी की बात है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ है नौकरी? जितने बेरोजगार हैं उनके लिए है क्या नौकरी? ये इसका जवाब जरूर मांगना उचित होगा।
जिस तरीके से हाल ही में 3 राज्यों के नतीजे आए हैं और बीजेपी एक कमजोर स्थिति में दिखी है, और जिस तरीके से कई जो उनके सहयोगी दल हैं गठबंधन के वो बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि राजनीतिक रूप से बीजेपी इस समय जो कभी इनविंसिबल दिखती थी एक कमजोर स्थिति में है, और अब वो जो अपने आप को बचाने के लिए जो भी कर सकती है करने की कोशिश कर रही है?
मुझे तो इनको क्रेडिट देना पड़ेगा, मोदी जी और अमित शाह जी को, कि उन्होंने इतना जल्दी जो डैमेज कंटेनमेंट, अब इसका क्या नतीजा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 3 चुनावों के नतीजे के बाद एक के बाद एक कुछ तो कर रहे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं।
ये थी राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामा सेशन। वहीं कल लोकसभा में ही केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को पास कर दिया गया। इस विधेयक के खिलाफ असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों में काफी विरोध हो रहा है। इसके कारण कल ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन समेत कुल 30 प्रमुख संगठनों ने पूर्वोत्तर राज्यों में बंद बुलाया था, जिसका असम में व्यापक असर देखने को मिला। केवल प्रदेश की बराक घाटी में इस बंद का इतना असर नहीं हुआ। बराक घाटी में हिंदुओं की एक बड़ी आबादी बांग्लादेश से आए विस्थापितों की है, जो इस बिल के समर्थन में है। सुनिए गुवाहाटी से आए दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC का काम अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बांग्लादेशी हिंदुओं को बसाने के लिए नागरिकता संशोधन बिल को संसद में पेश कर असमिया लोगों को नाराज कर दिया है। असम में अवैध घुसपैठ करने वाले हिंदुओं को अगर नागरिक का दर्जा दिया जाता है तो इससे अपडेट हो रही NRC की अहमियत पर असर पड़ेगा। असम समझौते की जिस शर्त के आधार पर NRC बनाई जा रही है उसके अनुसार 24 मार्च 1971 के बाद यहां आए अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर निकालने की बात कही गई है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लिहाजा असम में जो विरोध हो रहा है वो धार्मिक उत्पीड़न के तहत बांग्लादेश से आने वाले हिंदू बंगालियों को यहाँ बसाने को लेकर है। असम के मूल स्वदेशी लोगों को आशंका है कि पड़ोसी मुल्क से लाखों हिंदुओं को अगर यहाँ बसा दिया गया तो असमिया जाति, भाषा और उनकी संस्कृति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस के विधायक अब्दुल खालिक ने BBC से कहा,
ये तो वी आर अपोज टू दिस बिल, क्योंकि एक नंबर तो ये संविधान के खिलाफ है, ये धर्म के नाम पर शिफ्ट होना नहीं चाहिए। दो नंबर, असम में सब लोग, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल पॉलिटिकल पार्टी ये मान लिया 71-25 मार्च का बाद में जो लोग आया उसको जाना होगा जो असम एकॉर्ड में है। तो ये बिल पास होने से अभी नया फॉरेनर आ जाएगा हिंदू क्रिश्चियन के नाम पर, ये असम में लोग नहीं चाहते है। और और जो हिंदू का बात बोल रहा है वी आर नॉट अगेंस्ट हिंदू, लेकिन अगर बांग्लादेश हमारा फ्रेंडली कंट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कंपेल बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट हिंदूज इन दैट लैंड नॉट इन आवर लैंड।
5 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी सिलचर में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे जिसमें उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक को लोगों की भावनाओं और जिंदगियों से जुड़ा बताया था, लेकिन धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के लिए की जा रही इस राजनीति के चलते हिंदू बंगाली और असम के मूल असमिया लोगों के बीच एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। बराक घाटी के सिलचर शहर में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह कहते हैं,
बराकबली में कोई असर नहीं पड़ा है, खास करके बराकबली बोलते 3 डिस्ट्रिक्ट हम लोग को मिलता है, कछार, करीमगंज एंड हालाकंदी। अल्टीमेटली क्या हुआ, बंद सक्सेस नहीं हुआ, पूरा सुबह से ही गाड़ी हुई दूसरा हर जगह में चल रहा था। नरेंद्र मोदी जी जब आए थे उनका जो प्रोग्राम हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेशियों का समर्थन किया, आसामी भाषा नॉन आसामी में एक लड़ाई लगा के चले गए उन्होंने।
बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे असमिया लोगों के बीच हिंसक टकराव का पुराना इतिहास रहा है। बीजेपी हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए ये दाव खेल रही है और इसकी शुरुआत पार्टी ने असम से कर दी है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
अब तक भाजपा के कई सहयोगी दलों ने उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार में शामिल शिवसेना गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने की बात तो करती है, लेकिन सरकार से अलग नहीं होती। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था अगर शिवसेना अलग होती है तो उनकी पार्टी उसे पटक कर आगे बढ़ जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे सहयोगी मयूरेश कोन्नूर ने खास बातचीत की शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत से।
क्या आह्वान का स्वागत करता हूँ, शिवसेना का स्वभाव है अगर कोई आह्वान देता है तो वो चैलेंज हम स्वीकार करते हैं। अमित शाह जी भाजपा के बड़े नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर हमें पटकने की बात महाराष्ट्र में आकर अमित जी ने की है, अमित भाई ने की है, तो हम जो महाराष्ट्र के शिवसेना के हिम्मतबाज लोग हैं तो अब मजा आ जाएगी।
लेकिन शिवसेना फिर क्या चाहती है, शिवसेना को कुछ सीटों की अपनी मांग है और इसलिए वो इतना खींच रही है, शिवसेना को ये एनडीए में इस बार रहना चाहिए कि नहीं चाहिए?
शिवसेना की कोई मांग नहीं है बीजेपी के पास, ना हमने मांगा है ना मांगेंगे। जो अलायंस है, गठबंधन है, 2014 में अमित शाह जी ने ही तोड़ा है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज जो हमारे पीछे पड़ रहे हो आप रोड रोमियो जैसे, हम आपकी तरफ देखते भी नहीं फिर भी पीछे पीछे आप आ रहे, तो 2014 में ये प्यार कहाँ गया था, तब यही शिवसेना थी ना। शिवसेना नहीं बदली है, आप बदले उस वक्त। अब आपके मन में निराशा है, डर है हारने का, तो आपको लगता है कि अलायंस होना चाहिए।
ऐसा आरोप हो रहा है शिवसेना के ऊपर कि वो लोकसभा में के साथ ही जब चर्चा होगी तो विधानसभा में जो महाराष्ट्र में है अक्टूबर में, उसकी सीटें जो है ज्यादा सीटों की मांग अभी अपने झोले में ले लेना चाहती है, तो क्या इस वजह से शिवसेना ज्यादा खींच रही है, बार्गेन कर रही है?
शिवसेना कभी ब्लैकमेल या सेटलमेंट नहीं करती, जो हमारा हक है वो हम हमेशा लड़कर लेते हैं, झोले नहीं फैलाती कभी, हाथ नहीं सामने करते कभी, नहीं तो हम छोड़ देते हैं। हम त्याग करने वाले लोग हैं, सैक्रिफाइस करने वाले लोग हैं, तो ये गलत प्रचार है ये।
लेकिन फिर सैक्रिफाइस की बात आती है तो शिवसेना हमेशा केंद्र सरकार हो, मोदी की सरकार हो या फिर फडणवीस की सरकार हो, इन दोनों को, महाराष्ट्र सरकार को भी सरकार में रहते हुए इतनी टीका और क्रिटिसिज्म करती है, तो फिर सैक्रिफाइस करके सरकार से बाहर क्यों नहीं हो जाती?
अगर हमारे साथ रहने में बीजेपी को मजबूरी है महाराष्ट्र में, तो बीजेपी के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, शिवसेना के साथ रहना ही नहीं है।
शिवसेना के मंत्री हमेशा कहते हैं कि हम जेब में इस्तीफा लेके घूमते हैं, तो फिर, और वो कह चुके हैं ये बार बार, तो फिर क्यों नहीं होता?
मैंने तो नहीं कहा है, ना पार्टी चीफ ने इस प्रकार की भाषा की है, हमने इतना ही कहा जब समय आएगा तब ये निर्णय होगा।
तो फिर शिवसेना की मजबूरी क्या है कि इतनी टीका करते हुए भी जेब में इस्तीफा लेके हुए भी वो ना देना, ये मजबूरी क्या?
महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, इस राज्य में अगर अस्थिरता पैदा हो गई हमारे कारण से, अगर सरकार गिर गई फिर कांग्रेस के साथ कोई और सरकार बनेगी तो लोग हमें ब्लेम करेंगे। हमारी लड़ाई कांग्रेस एनसीपी के साथ रही, हम उनको मौका नहीं देना चाहते, चाहे शिवसेना बीजेपी हम दोनों ने अलग अलग लड़े, लेकिन हमारा लड़ाई हो गई कांग्रेस एनसीपी के साथ। तो ये टाइम गैप सेटलमेंट नहीं है, ये टाइम गैप एक टेम्पररी अरेंजमेंट है महाराष्ट्र को थोड़ा स्थिर रखने के लिए।
आरोप ये भी है कि ये अरेंजमेंट जो है वो शिवसेना को ही चाहिए, और आने वाले चुनाव में अगर साथ में जाना है तो कोई तो मुद्दा चाहिए, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, उद्धव ठाकरे अयोध्या चले गए और सिर्फ उस मुद्दे को पकड़े, भाजपा से दोस्ती हो सकती है इसलिए शिवसेना ये कर रही है।
तो राम मंदिर बनाइए, अगर राम मंदिर की बात अगर कोई बोलता है तो मोदी जी ने राम मंदिर बनाना चाहिए, RSS ने उसको मोदी जी को आदेश देना चाहिए, राम मंदिर बनाइए, राम मंदिर बनाने की हिम्मत दिखाइए ना, और बाद में हमसे बात करिए।
शिवसेना नेता संजय राउत से खास बातचीत कर रहे थे BBC संवाददाता मयूरेश कोन्नूर। अब दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ खास है डाल लेते हैं नजर। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद है नवीन नेगी। जी नवीन, बताएं।
जी शाहिद, आज दिल्ली से प्रकाशित लगभग सभी समाचार पत्रों में कल लोकसभा में जो सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण से जुड़ा संशोधित विधेयक पारित हुआ था उसी से जुड़ी खबरों को सुर्खी बनाया है।
जी
हिंदुस्तान टाइम्स ने शीर्षक दिया है कि सरकार ने कहा कोई कानूनी बाधा नहीं, गरीबों के लिए 10% आरक्षण लोकसभा में पास। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि विरोध में सिर्फ 3 वोट, आरक्षण विधेयक लोकसभा में पास, आज राज्यसभा में होगी परीक्षा। नवभारत टाइम्स की जो सुर्खी है वो यह है कि आरक्षण बिल पहली परीक्षा में पास,
आज राज्यसभा की बारी।
जी और हिंदुस्तान टाइम्स का शीर्षक भी बता देते हैं कि गरीब सवर्णों का आरक्षण लोकसभा में मंजूर हुआ।
इसके अलावा नवीन सीबीआई डायरेक्टर को लेकर जो कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको
जी
क्या कहते हैं अपना पद दोबारा संभालने के लिए कह दिया है, वो उससे जुड़ी सारी खबरें हैं। नवभारत टाइम्स की हेडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर की कुर्सी लौटाई लेकिन हाथ भी बांध दिए।
जी कई सारे अखबारों में ये पहली खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि आलोक वर्मा को दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल तो किया लेकिन एक और फैसला सुना दिया कि नीतिगत फैसले आलोक वर्मा नहीं ले पाएंगे अपने पद का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि आलोक वर्मा अब जब वापस आए हैं तो शायद कई महत्वपूर्ण ट्रांसफरों को दोबारा वापस बुलाने का वो फैसला ले सकते हैं, ये खबर है। और एक कार्टून का जिक्र करना चाहूंगा जो जनसत्ता में छपा है, इरफान का एक कार्टून है और उसके ऊपर आलोक वर्मा से जुड़ी हुई खबर उन्होंने लिखी है। साथ में एक कुर्सी बनाई है जो सीबीआई डायरेक्टर की कुर्सी है, उसमें पिंजरे में बंद एक तोते को उन्होंने बैठा दिया है।
जो पिंजरे में बंद तोते का जो एक पुराना किस्सा सीबीआई को लेकर चला आ रहा है यूपीए गवर्नमेंट का, उस पे इन्होंने एक नया बना दिया है। इसके अलावा अयोध्या को लेकर भी खबरें देखने को मिल रही हैं तमाम अखबारों में नवीन।
जी शाहिद, अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ की जो है वो पीठ बनाई है और इसी से जुड़ी खबरें सभी अखबारों में है। इस पीठ के जो नेतृत्व करेंगे वो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई करेंगे और इसके अलावा इसमें जस्टिस एस ए बबडे, एन वी रमन, यू ललित और डी वाई चंद्रचूड़ रहेंगे।
10 जनवरी से सुनवाई होगी।
जी कल से सुनवाई होगी।
जी बहुत बहुत अखबारों की समीक्षा के लिए नवीन।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बिहार के प्राइमरी स्कूलों की हालत खस्ता है। राज्य के 1140 प्राइमरी स्कूलों के संचालन पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सवाल उठाए हैं क्योंकि इन स्कूलों में नामांकन 40 से भी कम है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत एक प्राइमरी स्कूल में कम से कम 40 बच्चों का नामांकन होना चाहिए। इसके कारण पहले भी स्कूलों के विलय के नाम पर हजारों भूमिहीन और भवनहीन प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा चुका है। आखिर बिहार के प्राइमरी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, सुनिए पटना से नीरज प्रियदर्शी की ये विशेष रिपोर्ट।
पढ़कर क्या बनना चाहते हैं?
पढ़कर पुलिस।
हमारे सवालों का जवाब देता बिट्टू बिहार की राजधानी पटना का दिल कहे जाने वाले बोरिंग रोड इलाके के पानी टंकी के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय इंद्रपुरी के 5वीं कक्षा का छात्र है और उससे ये सवाल इसलिए पूछे गए थे क्योंकि बांस की बल्लियों के सहारे टिका बिट्टू का यह स्कूल अपने साथ 2 अन्य स्कूलों का बोझ लेकर शहर के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में चलता है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से 2 स्कूल आज से नहीं पिछले 20 सालों से इसी हाल में इसी जगह पर चल रहे हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पूरे बिहार में 1140 स्कूलों को 40 से भी कम नामांकन वाले स्कूलों के रूप में चिन्हित कर शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बंद करने का सोच रही है। सर्व शिक्षा अभियान के यूडाइस के 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 13 प्राथमिक विद्यालयों में 0 नामांकन है जबकि 171 प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन 0 से अधिक एवं 20 से कम है। इसी तरह 21 से 30 एवं 30 से 39 नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या क्रमशः 336 एवं 620 है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिस जिले में बिहार की राजधानी है और जहां पूरा राज्य तंत्र काम कर रहा है वहां भी 133 ऐसे स्कूल हैं जिनमें अति न्यून नामांकन और इनमें से 2 में तो नामांकन गिरकर 0 तक पहुंच गए हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार के इन सरकारी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की नौबत आ पड़ी है? यहाँ तक कि राजधानी के अंदर भी घनी बसावट वाले क्षेत्र के इन स्कूलों से भी बच्चे क्यों कम होते जा रहे हैं? वहाँ के शिक्षक संजय कुमार इन सवालों के जवाब में कहते हैं,
4 को 5 को स्कूल मिलाकर एक आप मिडिल स्कूल बना दीजिए कि उसमें बच्चा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए।
हाँ, उसको
टीचर कैमरा कमी नहीं है, आपको उसमें बिल्डिंग बना देना है, बेंच डेस्क दे देना है, हो गया काम, क्लियर हो गया आपका। आप मर्ज कर दे रहे हो, स्कूल खत्म कर दे रहे हो तो सरकार का स्थिति खराब। स्कूल यहाँ बढ़ना चाहिए, 19 साल में जनसंख्या बढ़ी है, आबादी बढ़ी है तो विद्यालय की संख्या बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए।
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा चिन्हित स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बीबीसी की पड़ताल में एक तरफ झोपड़ी में चल रहे प्राइमरी स्कूल मिले जहां संसाधनों का घोर अभाव है, वहीं दूसरी तरफ पटना जिले के ही नौबतपुर के प्राथमिक विद्यालय वाजनचक में बेहतर भवन के साथ साथ बड़ा कैंपस होने के बावजूद भी बच्चों का नामांकन शून्य तक पहुंच गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? गांधी फेलोशिप के तहत प्राथमिक विद्यालयों के खस्ता हाल पर काम कर चुके चंद्रभूषण इसके अनेक कारण बताते हैं।
राजस्थान, केरल जैसे राज्यों में जाएंगे तो हालात ऐसे नहीं है। वहाँ प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पर भी अलग अलग मॉडल पर काम हो रहा है, मगर हमारे यहाँ बिहार में सरकार ने साल 1996-97 के बाद से एसआई शिक्षकों की कोई भी बहाली नहीं की है। पंचायत स्तर के उन शिक्षकों को फिर छात्र कल्याण की विभिन्न योजनाओं को चलाने का जिम्मा भी दे दिया गया। स्कूलों से पढ़ाई खत्म हो गई, वहां योजनाएं चलने लगी और छात्र अभिभावकों के शिक्षकों का संबंध कम होने लगा। राजस्थान में हम देखें तो वहां साल में दो बार शिक्षक गाँव में घूम घूम कर बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए एक आंदोलन से चलाते हैं, जिसे वो राजस्थान सरकार प्रशोत्सव कहती है। अगर वहाँ ऐसा हो सकता है तो यहाँ भी करना चाहिए।
यूडाइस के आंकड़े कहते हैं कि बिहार के प्राइमरी स्कूलों में पिछले साल की तुलना में 1.8 करोड़ बच्चों का नामांकन गिरा है। बिहार सरकार ने इस साल राज्य के बजट में शिक्षा के मद में सबसे अधिक करीब 32,125 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्या कम नामांकन वाले स्कूलों को सच में बंद कर दिया जाएगा? हमने इस मसले पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद निदेशक संजय सिंह से बात की।
हम लोग हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में हम लोग आंकड़े इकट्ठा करते हैं स्कूलों से, विद्यालय के स्ट्रक्चर के संबंध में, बच्चों के संबंध में और शिक्षक के। ऐसी रिपोर्ट आई कि ऐसे सारे स्कूल है जहाँ पे 40 से इन्वॉल्वमेंट कम, इसलिए बंद करने का नहीं निर्णय दिया गया। दिस इज टू जॉल्ट द अवेयरनेस ऑफ द स्कूल्स वेयर इन्वॉल्वमेंट इज लो। और हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये यूडाइस का जो रिपोर्ट है वो सही है? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दो चार जगहों पे भाई मिस्टेक गलत।
बिहार सरकार का शिक्षा विभाग इससे पहले भी 1173 भूमिहीन और भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों को शिफ्ट कर उन्हें बगल के मध्य विद्यालयों के साथ मर्ज कर चुका है। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसी सूरत में भी शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल रह पाएगा? नीरज प्रियदर्शी, बीबीसी पटना।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह। शुरुआत करना चाहूंगी क्रिकेट से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम देने का फैसला किया है। उनकी जगह मोहम्मद सिराज खेलेंगे। भारत को 12 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज खेलनी है, वहीं उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे की सीरीज खेलनी है जो 23 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेंगी। और अब बात एशियन कप फुटबॉल की। चीन ने AFC एशियन कप के ग्रुप सी के अपने पहले मैच में सोमवार को खलीफा स्टेडियम में कर्गिस्तान को 2-1 से मात दी। चीन ने इस मैच में 1 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की। ग्रुप सी में दक्षिण कोरिया भी अपना मुकाबला जीतने में सफल रहा, उसने फिलीपींस को 1-0 से शिकस्त दी। वहीं ग्रुप डी के मैच में ईरान ने यमन को 5-0 से हराया। खेल समाचारों में आज इतना ही।
अब से भारत में बजेंगे सुबह के 7 और वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए लाया गया संविधान संशोधन विधेयक कल लोकसभा में पारित हो गया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने से जुड़े अपने फैसले के बारे में टीवी के जरिए अमरीका की जनता को संबोधित करेंगे। कांगो गणराज्य के एक कैथोलिक पादरी ने कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों में गड़बड़ियां होते हुए देखी हैं। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट जारी कर विश्व बैंक ने कहा है कि आने वाले वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब एक ड्रोन के देखे जाने के कुछ देर बाद एयरपोर्ट का कामकाज कुछ देर के लिए रोक दिया गया। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट यूरोप का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह कदम उठाया। हमास का कहना है कि उन्होंने दर्जनों संदिग्ध फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, जो बीते नवंबर में गजा में इजरायली विशेष बल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच हुई लड़ाई में इसराइल का साथ दे रहे थे। गजा के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि उन्होंने एक विशेष जांच में 45 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आएं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।